सूरत नाजियात मक्की सूरत है, 46 आयात हैं और 2 रुकू हैं। अल्फाज कलेमात की तादाद 181 है, हरूफ 791 हैं। इस सूरत के 3 नाम आए हैं। पहला नाम अन्नाजियात, पहले ही लफ्ज से है वन्नाजियाती, और दूसरा नाम इसको असाहरा भी कहा जाता है, आयत 14 से है। तीसरा नाम अपामा, आयत 34 से लिया गया है। इस सूरत का जमाना नजूल, ये सूरत नबा के फौरन बाद नाजिल हुई और इब्तदाई जमाने की नाजिल शुदा सूरतों में से है। इसका मौजू कयामत और जिंदगी बाद मौत का असबात, और साथ साथ इस बात पर भी तंबीह कि अल्लाह के रसूल को झुटलाने का अंजाम क्या होता है। वन्नाजियाति गर्को वन्नाशिकाति नश्को वस्साबिहाति सबहा फस्साबिकाति सबको फल्मुदब्बिराति अम्रो। पहली 5 आयतों में 5 औसाफ रखने वाली हस्तियों की कसम खाई गई है। 5 औसाफ रखने वालियां या रखने वाले। इस सिलसिले में जो है वो एक राय तो ये है कि इससे मुराद हवा और बादल हैं, क्योंकि हवा और बादल जो हैं उनकी ये सिफ्त है। दूसरी राय ये है कि इससे मुराद फरिश्ते हैं, और अक्सर मुफस्सरीन ने इससे मुराद फरिश्ते करार लिए हैं। वन नाजियाती वो हर्फ कसम है, नाजियात का लफ्ज जो है नून ज़े ऐन, इसके मानी है कि सख्ती से खींचना। नज़्म कहते हैं कि किसी को उसकी करारगाह से सख्ती से निकालना, सख्ती से उसकी करारगाह से खींचना। तो मुफस्सरीन की राय क्या है कि फरिश्तों की कसम जो मौत के वक्त मैयत के एक एक रगो रेशा में डूबकर वहां से उसकी रूह खींच कर लाते हैं, क्योंकि वन्नाजियाति गर्का गर्क होकर डूब कर, तो गर्का कहते हैं डूब कर। और मुफस्सरीन ये कहते हैं कि फरिश्तों की ये सिर्फ जो है कि वो जो डूब कर सख्ती से जो है वो जान निकालते हैं, तो ये सिर्फ इस्तेमाल की गई है उन फरिश्तों की जो काफिरों की जान निकालते हैं, क्योंकि काफिरों की जान जो है वो सख्ती से निकाली जाती है। गरक इगराक मतलब होता है किसी काम में पूरी कुव्वत और शिद्दत जो है वो लगाना, जैसे अगरकन नाजिया फिल कौस, कुमान खींचने वाले ने इसके खींचने में पूरी कुव्वत सरफ कर दी। तो सख्ती के साथ खींच कर निकालने वाले कौन है? अजाब के फरिश्ते, जो काफिर की रूह सख्ती से निकालते हैं। और इस सख्ती में रूहानी सख्ती भी होती है, जरूरी नहीं कि देखने वाले को नजर आए। और बाज औकात मुसलमानों में भी जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं तो उनकी रूह जो है फरिश्ते सख्ती से निकालते हैं। वन नाशिताति नश्तो नून शीन तोए, नश्तुन जो है ये लुगते अजदाद में से है, जविल अजदाद। नश्त के मानी होते हैं जैसे नश्तल हबल रस्सी को गिरा लगाना, नश्तल उकदा गिरा को मजबूत किया, और इसी तरह इसके मानी होते हैं गिरा खोलना भी, गिरा खोलना भी। नुशूत का लफ्ज आता है आसानी से खुल जाने वाली गिरा के लिए, तो नश्त का लफ्ज जैसे नश्तल हबल रस्सी को गिरा लगाई, रस्सी को खोल भी दिया। अब अल्लाह ताला ने इंसान को जब बनाया और पैदा किया तो एक एक जोड़ और बंद को इस तरह मजबूत किया कि गिरा लगाकर, जैसे एक एक जोड़ बड़ा मजबूत बनाया। अब मौत के वक्त फरिश्ते उन्हीं जोड़ों के बंद खोल देते हैं, उन्हें ढीला कर देते हैं, اور پھر کیا کرتے ہیں کہ انسان کے جو ہے وہ بدن کے اندر تیرتے پھرتے ہیں، غواص بن جاتے ہیں. غواص کون ہوتا ہے؟ جو زمین سمندر کے اندر غوطے لگاتا ہے، تو سمندر سے نکالنے کے لیے، موتی نکالنے کے لیے وہ اندر غوطہ زن ہوتا ہے نا، اندر جاتا ہے. تو سمندر کی گہرائیوں میں اترنا پڑتا ہے، گہرائیوں میں تیر کر جو ہے غواص سمندر سے موتی نکال کر لاتا ہے، ہیرے نکال کر لاتا ہے. تو بالکل اسی طرح فرشتے کیا کرتے ہیں کہ اندر گھستے ہیں اور بند بند کھول کر اور جو ہے وہ روح نکالتے ہیں. اور یہ بند کیسے کھلتے ہیں؟ نشتا، آسانی سے اس کی گرے کھل جاتی ہیں، گرے ڈھیلی ہو جاتی ہیں. نشتن ناشتا تن کی جمع ہے، اور نشتن جو ہے کہتے ہیں کہ یہ نشتن سے یہ اسم فائل ہے، ون ناشتاتی. نشتن جو ہے، ناشتات کیا ہے؟ یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ناشتاتن واحد ہے. تو نشتن، نشتن کے پھر معنی کیا ہے؟ گرا لگانا بھی اور گرا کھول دینا بھی. تو یہ دوسری آیت جو ہے یہ ان لوگوں کی روح نکالی جاتی ہے، وہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ دوسری آیت میں مومن کی روح نکلنے کو جو ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ فرشتے مومن کی روح کو جب قبض کرتے ہیں تو آسانی سے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، شدت نہیں کرتے. اب ضروری نہیں کہ یہ آسانی روحانی، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ روحانی آسانی مراد ہو، ضروری نہیں کہ جسمانی طور پر بھی نظر آئے، کیونکہ بعض بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی روح بڑی تکلیف سے جو ہے وہ نکالی جاتی ہے، اور نزع کا جو وقت ہوتا ہے اور جو اس کا حال ہوتا ہے وہ ارد گرد والوں کو بھی اس وقت نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑی مشکل میں ہے. تو جسمانی طور پر ون ناشتاتی نشتا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر روحانی طور پر بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اصل وجہ یہ ہے کہ کافر کو نزع روح کے وقت ہی دوزخ کا عذاب جب دکھایا جاتا ہے تو دوزخ کے عذاب سے روح گھبرا کر بدن میں چھپنا چاہتی ہے، روح نکلنا نہیں چاہتی، اندر جاتی ہے. اب فرشتے کھینچ کھینچ کر اس کو نکالتے ہیں. اب مومن کی روح کے سامنے جب عالم برزخ کا ثواب آتا ہے، جیسے جنت کے باغیچوں میں سے قبر ایک باغیچہ بن کر جب اس کے سامنے لائی جاتی ہے اور جنت کی نعمتیں اور بشارتیں آتی ہیں، تو روح تیزی سے اس کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتی ہے. اور جان نکالنے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ پاؤں سے ہوتی ہے. سب سے پہلے پاؤں جو ہے اس سے روح کھینچی جاتی ہے اور پاؤں ٹھنڈے اور بے جان ہو جاتے ہیں. تو پہلی دو آیتیں جو ہیں یہاں پر اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے، اور ایک رائے کیا ہے کہ یہ فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ہواؤں اور بادلوں کی قسم کھائی گئی ہے. کیونکہ والنازعات غرقا، کہ یہ ہوائیں اور بادل بعض لوگوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. تو بادل چلتے ہیں، ہوائیں ان کو کھینچ کر چلاتی ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان پر آ کر برس پڑتی ہیں پھر بارشیں، یا پھر آندھی آ جاتی ہے ان پر. اور والناشطات نشطا، کہ رحمت کی ہوائیں اور رحمت کے بادل، اور رحمت کی جو ہے پھر وہ بادل جب برستے ہیں تو کیا ہے کہ بارش ان کے لیے پھر رحمت بن جاتی ہے. تو نافرمانوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ والنازعات غرقا، اور جو جن علاقوں اور لوگوں کے لیے وہ رحمت بن کر آتی ہیں ہوائیں اور بادل، والناشطات نشطا. والسابحات سبحا، اور تیرنے والے تیرنا. سبحا کا لفظ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا پانی یا ہوا میں تیرنا اور تیز رفتاری سے گزر جانا. تو ہوا میں پرندے کے تیرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور جو مچھلی ہے اس کے پانی کے اندر جانے کے لیے بھی جو ہے پانی میں تیرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. سباحن، ماہر اور تیراک کو کہتے ہیں، وہ فرشتہ جو روح کو نکال کر زمین سے آسمان کی طرف سرعت سے، سہولت سے چلتے ہیں. گویا کہ فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم سننے میں بڑے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ فلاں کی روح نکالو، فلاں کی نکالو، بے روک ٹوک کائنات کے اندر ہوا میں تیرتے پھرتے ہیں، اور پھر حتیٰ کہ ان کے بدن کے اندر جا کر جو ہیں وہ ڈوب کر، کھینچ کر، یا پھر آہستگی سے جو ہے وہ ان کی روح نکال لیتے ہیں. تو وسابحاتی सभा जो है, फिर इसके मानी क्या है कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह के अहकामात की तामील में तेजी से रवा दवा होते हैं, ऐसे जैसे कोई फिजा में तैर रहा हो, जैसे कोई पानी में जो है वो तैर रहा हो, फिजा में उड़ रहा हो और पानी में तैर रहा हो। फसाबिकाती सबका, फिर आगे बढ़ने वालों की लपक कर, साबिकात सबका से है और इसके मानी होते हैं कि जैसे किसी भी काम में उजलत दिखाना, सबकत ले जाना। अब फिर ये जो रूहें फरिश्तों ने जो है वो बदनों से निकाल ली हैं आयस्तगी से या सख्ती से, अब इनको या तो सिज्जीन में पहुंचाना है या इल्लीन में, या जन्नत में या जहन्नुम में, या जो है वो जो भी इनका अंजाम है अच्छा या बुरा ठिकाना, तो फरिश्ते वहां पर पहुंचाने में जो है सबकत और उजलत से काम लेते हैं, देर नहीं करते। वो क्या करते हैं कि मोमिन की रूह को जन्नत की हवाओं और नेमतों की जगह में और काफिर की रूह को दोजख की हवाओं और अजाबों की जगह में पहुंचा देते हैं, बड़ी उसमें जो है वो जल्दी करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। और जो है आयत नंबर 3 और 4 को जिन लोगों ने हवाओं के मानी में लिया है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हवाएं और जो बादलों का ताल्लुक है ये लाजिम और मलजूम है। अब क्या होता है कि हवाएं जो हैं जब चलती हैं तो सबकत ले जाती हुई, तो बादलों से लदे हुए जो बादल होते हैं पानी से लदे हुए, तो हवाएं जो हैं फिर उनको जो है वो बरसाने में सबकत ले जाना चाहती हैं, किसी इलाके में रहमत बनाकर और किसी इलाके में अजाब बनाकर। खुश्क जगह जो है वो जलथल हो जाती है और जहां अजाब बनाना होता है तो वो खुश्क और तिशना रह जाती है, फिर उस पर बारिश होती भी नहीं है या ज्यादा हो जाती है। तो वो कहते हैं कि ये जो वसाबिहाती सभा ये क्या है कि बादल और जो हवाएं हैं उनके लिए आया है, और फसाबिकाती सबका के बादलों की बाग दौड़, कि अब क्या है कि हवाएं तेज चल रही हैं और इसके अलावा बादल के मुख्तलिफ ग्रुप हैं, दस्ते हैं जो एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते हैं, और हर बादल ये चाहता है कि नंबर वन वो रहे और उस इलाके में जाकर बरस जाए। तो बहरहाल वो ये कहते हैं कि तुंद और नरम हवाएं और बादलों के जो तसरुफात हैं और उनकी तेजी है, तो ये सब चीजें क्या हैं कि ये भी जो हैं ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियां हैं। फल मुदब्बिराती अमरा, फिर तदबीर इंतजाम करने वालों की हुक्म के मुताबिक। इसके क्या मानी है कि फल मुदब्बिराती, दुबर पीठ को कहते हैं ना, तो मुदब्बिर कौन होता है जो सिर्फ आगे ही नहीं देखता, जो किसी चीज के पीछे भी देखता है, उसके अवाकिब नताएज उस पर गौर व फिक्र करता है। तो फल मुदब्बिराती, पस तदबीर करने वालों की अमरा हुक्म की। तो आप देख लीजिए कि फिर एक राय क्या है कि इससे मुराद फरिश्ते हैं। अब फरिश्ते जो हैं क्या तदबीर करते हैं, मुफस्सरीन ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जो काम इनके सपोर्ट करते हैं वो इसकी तदबीर करते हैं। असल मुदब्बिर तो अल्लाह ही है ना, लेकिन अल्लाह ताला अपनी हिकमत बालिगा के तहत फरिश्तों के जरिए काम करवाता है तो उन्हें भी मुदब्बिर कहा जाता है। और आप देखें कि अल्लाह ताला ने वही जो है फरिश्तों के सपोर्ट की, तो फरिश्ते क्या करते हैं कि उनसे जो है कोई भी सुनगुन ना ले ले, कोई शैतान सुन ना ले, तो बहुत हिफाजत से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वही रसूल अल्लाह तक पहुंचाई। या अल्लाह ताला हुक्म देते हैं फरिश्तों को कि अब जो है वो रूह निकाल ली जाए नेक की या बुरे शख्स की, तो उसमें वो बहुत तेजी दिखाते हैं फिर उसकी तदबीर करते हैं। तो ये फरिश्तों की कसम जो है यहाँ पे खाई गई है। और दूसरी जो राय है कि इससे मुराद जो है वो हवाएं हैं, तो इसके मानी ये हैं कि अल्लाह ताला जब हवाओं को हुक्म देते हैं तो फिर हवाओं को जो है और बादलों को जो है, अब ये नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा अल्लाह ताला को एहतमाम करना पड़ता है, बस एक बात कह दी और उसके बाद जो है वो हवाएं जो हैं वो किसी के लिए रहमत बन जाती हैं तो जमीन सोना उगलने लगती है, बस वो बरस जाती हैं। और या फिर ये कि वो हवाएं जो हैं वो आसिफ बनकर या जो है तुगयानी बनकर खसो खाशाक की तरह लोगों को उड़ा देती हैं, तो तदबीर करती हैं, इंतजाम करती हैं, जो भी काम अल्लाह उनके सुपुर्द कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि हवा और बादल भी इससे मुराद लिए गए, लेकिन ज्यादातर मुफस्सरीन ने ये कहा कि इससे मुराद फरिश्ते हैं, और अहले मक्का जो थे वो फरिश्तों की पूजा करते थे, अल्लाह की बेटियां उनको करार देते थे। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है वो पांच जो सिफात जिनकी हैं, तो ये फरिश्तों की हैं, और इनकी कसम खाकर जो है ना एक बात कही है। अब फरिश्ते आप देखें कि नजर नहीं आते ना, छुपे हुए हैं। अब हवाएं फिर भी महसूस होती हैं, बादल नजर आते हैं, फरिश्ते तो नजर भी नहीं आते। तो छुपी हुई चीजों की कसम खाई, छुपी हुई चीज को वाजे करने के लिए। और फिर आप देखिए कि आयत नंबर 6 से 14 तक जो है वो कयामत पर कसम खाई गई है। एक होता है कसम खाना और एक होता है जवाबे कसम। तो जवाबे कसम क्या है? कयामत आकर रहेगी, और ऐसे नहीं आएगी हलचल मचाती हुई, जो है वो जलजले की तरह, जुलजिलातिल है, जुलजाल जिलजाल, या फिर रजफा। तो यहां पे अब जो जिस चीज पर अल्लाह ताला ने पांच चीजों की कसम खाई है, और वो फरिश्ते हैं, और फरिश्ते नजर नहीं आते, यौमा तरजफुर राजिफातु, जिस दिन कांपेगी कांपने वाली। तो राजिफा जो है इसके मानी होते हैं जमीन में जलजला आना, कांपने लगना। बाहरुन रजाफुन कहते हैं ऐसा समंदर का पानी के जिसके अंदर जो है वो लहरों के अंदर एक तलातुम हो, जैसे ऊपर नीचे लहरों में भी एक जो है वो जैसे जलजला आ जाता है ना, वो तुगयानी आती है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर जमीन में जलजला आता है तो जोर जोर के जो है वो झटके होते हैं। यौम तरजुफुर राजिफा, जिस रोज हिला मारेगा जलजले का झटका। तो जलजला आएगा, राजिफा दूसरा लफ्ज जो है फिर इस्तेमाल हुआ, और वो है राजिफा, के उसका जलजला जो है वो कांपने वाला होगा, उसका झटका जो है वो सबको हिला देने वाला होगा। राजिफातुन तत्बाउहा रादिफा, और इसके पीछे एक और झटका पड़ेगा। अब रादिफ किसे कहते हैं? रादालफा, इसके माने होते हैं किसी के पीछे सवार होना। रिदफुन एक सवार के पीछे दूसरे सवार को कहते हैं, मसलन जो आगे सवार बैठा होता है उसको कहते हैं राकिब, उसके जो पीछे होता है उसको कहते हैं रादिफ। अब किसी चीज के पीछे इस तरह की एक और चीज का आना और लगातार आना, उसके लिए आता है रादिफा। रदीफ और काफिया शेर और शायरी में क्या होता है कि बिल्कुल हम वजन अल्फाज आते चले जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो रदीफ काफिये मिलते चले जाते हैं। जैसे कि सवारी नहीं होती, सवार पर एक आगे बैठा फिर उसके पीछे। तो ये जो कयामत के जलजले आएंगे, एक नहीं कि एक आया फिर खत्म, एक जलजला आएगा और जोर का झटका होगा। और रजफ और राजिफा में भी ये कि कई जलजले, तत्बा और रादिफा, इसके पीछे लगा हुआ होगा और झटका। जैसे कि राकिब के पीछे रादिफ होता है, सवार के साथ जुड़कर एक और पीछे उसके बैठा होता है, फिर इसके पीछे एक और, एक उसके पीछे और। तो जलजले जो है वो सवार हैं, चल पड़े हैं, कयामत का हलचल जो है वो चल पड़ा है, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे तीसरा, चौथा। तो पहले झटके से मुराद जमीन बिल्कुल तबाह, दूसरे झटके से मुराद तमाम मुर्दे जिंदा होकर निकल आएंगे। सूरत जुमर में भी आप पढ़ चुकी, जब सूर फूंका जाएगा तो जमीन और आसमानों में जो भी है सब मरकर गिर पड़ेंगे, सवाए उनके जिन्हें अल्लाह जिंदा रखना चाहे। फिर एक और सूर फूंका जाएगा तो यकायक वो सब उठकर देखने लगेंगे। सूरत जुमर आयत 68, तत्बाउहा रादिफा। और ये आयत जो है ये बड़ी ही जो है वो डराने वाली आयत है, अजाब कयामत की तस्वीर है, और लोगों को डराया जा रहा है कि लोग रसूल का इनकार करते हैं, कयामत का इनकार करते हैं, तो वो दिन जो है वो बड़ा ही हलचल वाला दिन होगा, पूरी कायनात पर उसके असरात होंगे। अब आप देखेंगे जब जलजला आता है जमीन पर, हर एक उसका झटका महसूस करता है, कोई घर के अंदर है, कोई सोया हुआ है, कोई काम कर रहा है, कोई सवारी पर है, कोई ऑफिस में है, कोई कश्ती में, कहीं भी कोई भी है, जिस इलाके में जलजला आता है सब उससे मुतासिर होते हैं। और बाजू का जलजला इतना शदीद होता है कि बस्तियों की बस्तियों को उलट पलट कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है, पहाड़ों में टूट फूट हो जाती है। तो ये कयामत की मंजर कशी की जा रही है, ये बड़ा सख्त वक्त होगा। कुलूबुन यौमाइज़िन वाजिफा, कुलूब कल की जमा है, बहुत से दिल उस दिन वाजिफा तुम धड़क रहे होंगे। आज तो दिल दुनिया में लगा हुआ है ना, मजे ऐशो इशरत, और वो जो जमीन और कायनात पर हलचल के असरात होंगे, वो जो राजिफा और रादिफा का हाल होगा, उसकी वजह से इंसान के जिस्मी नहीं, इंसान की रूहें और कलब वो भी उससे मुतासिर होंगे, अरवाह और कुलूब उन पर भी जो एक हलचल होगी, एक जलजले की कैफियत। तो दिलों पे जब जलजला आता है तो क्या वाजिफा तुम धड़कते हैं। और वो जीम फा जो है दिल का धड़कना, दिल का डरना, जब कोई खौफनाक बात होती है, सांप को देख लिया, एक्सीडेंट हो गया, या कोई मौत की खबर सुन ली, क्या होता है जोर जोर से दिल धड़कना शुरू कर देता है। तो वाजिफा तो उनके अंदर दो बातें पाई जाती हैं, नंबर एक बेकरारी और दूसरा डर और खौफ, क्योंकि डर और खौफ की वजह से लोग धड़कना शुरू कर देते हैं, दिल धड़कता है और लोग कांपना शुरू कर देते हैं। और ये असर जो है सिर्फ दिलों पर नहीं होगा जो दिल अंदर है, अब स्वार रूहा खौशिया निगाहें भी उनकी सहमी हुई होंगी। बसर वाहिद है, अबसार जमा है, और एक तो है ना निगाहों का जो है वो ऐसे जैसे चुंधिया जाना, निगाहें इंसान की जो है वो क्या हो जाएं कि बिल्कुल जो है एक तरफ जम जाएं और किसी शख्स को जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा ना। और दूसरा क्या है कि बजाहिर निगाहें ऐसी हैं कि जैसे वो जम सी गई हैं और इंसान हैरान है, शशदर है, लेकिन अब क्या है कि उनको नजर भी नहीं आ रहा। अब सारूहा खाशियातुन, निगाहें उनकी सहमी भी होंगी। ये जो है ना खाशियातुन, खाशीन आयन, ऐसे डर को कहते हैं जिसका असर जवारे और अजा पर हो। तो वो जो खौफ दिलों पर तारी हुआ उसका असर आंखों पर भी है, आवाज पर भी है, चेहरे पर भी है। इसकी वजह से आंखें सहम गई हैं, आंखें नीची हो गई हैं। ऐसा हॉल लोगों पर तारी होगा कि आंखें निगाहें दिल जिस्म सब जो है वो सहमे में होंगे। तो आप देख लीजिए कि इससे क्या बात पता चलती है, यहाँ पे अल्लाह ताला कयामत के दिन की मंजर कशी कर रहे हैं कि कयामत का दिन इतना शदीद होगा और ऐसा ये जलजला होगा कि आदमी के दिल भी जो है ना, दिल भी कांपेंगे और दिल की तर्जुमानी जो है वो बदन का रुआं रुआं करता है, रोंगटे भी खड़े होंगे, आंखों से भी उसकी कैफियत जो है वो झलकती है। तो कहा कि आंखें दिल जिस्म सारा कुछ जो है वो कयामत के जलजले से मुतासिर होगा। अब सार हुआ ख्वाशियातुन, अच्छा आप गमजदा हैं, अफसुरदा हैं, बहुत ही धड़कते हुए दिल और झुकी हुई निगाहें, यकूलूना इन्ना लमर्दूदूना फिल हाफिरा, वो कहेंगे क्या हम लमर्दूदूना, क्या हम लौटाए जाएंगे। और मर्दूदूना जो है ये किससे है, ये रद्द करने से है ना। तो अब आप देखें कि रा दाल दाल और इसके मानी क्या होते हैं, ये किसी चीज का लौट कर आना, और यहां पर क्या कहा जा रहा है लमर्दूदूना, और जो है ये इस्तेमाल हुआ है कैसे, जमा के सीगे में, क्योंकि उनका जो लौटना है वो अकेला थोड़ी होगा, और भी बहुत से लोग होंगे, यानी कयामत का की हलचल और उसका जलजला जो है वो सबको मुतासिर करेगा और सब जो हैं वो लौटेंगे और अब वापस लौटेंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। तो अल्लाह के पास ही लोग आए और अब अल्लाह की तरफ जो है वो लोग लौटा दिए जाएंगे। और ये जो रद्द करना है इसमें फिर क्या बात पता चलती है کہ ان کو جو ہے وہ پھیر دیا جائے. مردود لفظ بھی آپ پڑھ چکی ہیں نا, ہے نا مردود. تو ردا جو ہے یا یہ کہ لمردود ہونا, کیا البتہ ہم پھر واپس لوٹائے جائیں گے فی الحافرہ, حافرہ میں. حافرہ کسے کہتے ہیں؟ ہا فا را. یہ کہتے ہیں, یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے گڑا کھودنا, اور حفرتن گڑے کو بھی کہتے ہیں, قبر کے لیے بھی آتا ہے, اور حافرتن کھودی ہوئی زمین اور ابتدائی حالت کو بھی کہتے ہیں. اسی سے رد فی الحافرہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں سے چلا تھا وہیں واپس جانے لگا, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو اللہ کے پاس سے آئے تھے پھر اللہ کی طرف لوٹا دیے گئے. تو لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ اب دیکھیں کہ مردودونا کا لفظ آیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حافرہ کا بھی آ گیا. اب دونوں کے معنی تو ایک ہی لگ رہے ہیں نا, کہ ایک یہ ہے کہ پلٹا کر لانا, اور فی الحافرہ کے جو ہے پلٹا کر اس طرح سے لانا کہ پہلی حالت میں ہی پھر جو ہے وہ واپس آ جائے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حافرہ تم نقشے قدم کو بھی کہتے ہیں, کہ فلاں شخص جس حال میں تھا اس سے نکل کر پھر الٹے پہنچی میں واپس آ گیا. تو اللہ کا رسول جب ان کو ڈراتا تھا کہ تم مرو گے اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جاؤ گے, تو اب وہ لوگ جو ہیں وہ مذاق کے طور پر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے, اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ, کیا ہم مر جانے کے بعد, وہ سیدھا ہڈیاں ہو جانے کے بعد پھر ہم زندگی کی حالت میں لٹائے جائیں گے, دوبارہ ہمیں یہ زندگی مل جائے گی؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا, کیا جب ہم جو ہے وہ ہو جائیں گے عِظَامًا ہڈیاں, نَخِرًا کھوکھلی بوسیدہ. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے, ہڈیوں کا, عِظَامًا. تو اب جو ہے وہ کہیں گے کہ وہ ہڈیاں نخرتن جو بسیدہ ہوں, نون خا را کے معنی ہوتا ہے خراٹے لینا, اسی طرح بسیدہ ہونا, ریزہ ریزہ ہو جانا, اور ہڈی جب بسیدہ ہو کر اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے, خالی ہوتی ہے, اس میں جب سوراخ ہو جاتا ہے تب اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور وہ بھی کھوکھلی بسیدہ پرانی, قالوا تلك اذا كرة خاسرة, اس وقت وہ کہیں گے کہ اذا اس وقت, کرۃ لوٹنا, جیسے تکرار نہیں ہوتا, تکرار کیا ہوتا ہے, بار بار کسی چیز کا کرنا, اسی سے کرۃ ہے, کاف را را, کہ جیسے جو ہے وہ کرۃ کہ یہ لوٹنا, اور ایک بار کے لیے بھی آتا ہے کہ یہ لوٹنا جو ہے خاسرۃ, یہ تو بڑا ہی خسارے والا ہے, یہ تو بڑا ہی جو ہے وہ نقصان والا ہے, کہ گویا کہ یہ کہنے لگے کہ پھر تو یہ واپسی بڑی گھاٹے کی واپسی ہوگی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جب ہم جو ہے وہ کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں واقعی زندہ کیا جائے گا؟ جب رسول نے کہا کہ ہاں واقعی ایسا ہوگا کہ تمہیں جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا, تو اب اس پر جو ہیں وہ دوبارہ اس کی جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں, دوبارہ جو ہے وہ دل لگی کر رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ سنجیدہ ہو کر کہہ رہے ہیں, اب مذاق اڑانے کے بعد ذرا تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ بھی بعض اوقات مذاق اڑایا جاتا ہے نا, تو سنجیدگی کے موڈ میں مذاق اڑا کر کہتے ہیں, قالوا تلک اذن کرۃ خاسرا, کہ پھر تو یہ واپسی بڑی گھاٹے کی واپسی ہوگی, خسران. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, بس صرف ہی وہ زجرتن ڈانٹ ہے, واحدتن ایک. اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے, یہ کتنی جو ہے وہ چالیں چلیں, مذاق اڑائیں, کتنی ہی باتیں کریں, بس کیا ہوگا, ایک ہی ڈانٹ ہوگی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی, اور یہ کون سی ڈانٹ ہے, یہ جب سور پھونکا جائے گا. जब सूर फूंका जाएगा तो एक ही डांट सुनकर सब लोग जो हैं वो सूर की जो खौफनाक आवाज सुनेंगे, तो जितने लोग भी आदम अलैहिस्सलाम से के जमाने से लेकर रहती दुनिया तक पैदा हुए हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। फाइजा हूं बिस्साहिरा, और यकायक एक खुले मैदान में होंगे। अब ये नहीं कि इधर उधर हो, बयक वक्त सारे लोग जो हैं वो एक मैदान के अंदर जमा हो जाएंगे। तो इससे क्या बात पता चलती है, असल में साहिरत उनका लफ्ज इस्तेमाल होता है हमवार जमीन के लिए और खुले मैदान के लिए, कि हमवार और खुली जमीन में ये सारे लोग जो हैं यकायक जमा हो जाएंगे। ये जो जो है वो कब्रों में हैं, जो पानी के अंदर हैं, जिन्हें कोई जानवर जो है वो खा चुका है, तो मैदान हशर की डांट ऐसी डांट है जैसे सूरत जुमर में कहा गया सुम्मा नुफिखा फीही उखरा फाइजा हुम क़यामुन युनज़रून। फिर इस सूर में दोबारा फूंक मारी जाएगी और वो अचानक उठकर जो है वो खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे की तरफ जो है वो देखने लगेंगे। तो यहां पर भी यही बात है। अब उनके जो इतराजात हैं उसका जवाब जो है वो दो बातों में दिया गया कि बस एक ही जोर की डांट होगी, इतना ही करना पड़ना है अल्लाह को, क्योंकि अल्लाह तो कहता है कुन और फयाकुन हो जाता है। और दूसरी बात ये कि सूर के फूंके जाते ही सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। अब आप देखें कि आप दुनिया में भी देखें कि बहुत से लोग हैं बड़े मसरूफ हैं और बाज लोग कहते हैं कि ऐसे कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारे लोगों को कब्रों से निकालकर मैदान हशर में ले जाने के लिए कुछ अल्लाह ताला को ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बस एक डांट सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो आयत नंबर 6 से 14 तक एक तरफ कयामत की हलचल उसका जिक्र किया गया और दूसरी तरफ मुनकरीन का अंजाम बताया जा रहा है कि कैसे बेबस डरे हुए कांपते हुए नजरें सहमी हुई और उस वक्त जो जो कुछ वो उन पर गुजर रही होगी, तो उस वक्त जो है इन सारी चीजों से जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो परेशान होंगे।